नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। क्लेटन एम क्रिस्टेंसन की द इनोवेटर्स डिलेमा व्यावसायिक रणनीति और प्रबंधन पर लिखी प्रभावशाली पुस्तक है। इसका केंद्रीय प्रश्न सीधा लेकिन असहज है, अच्छी तरह संचालित और ग्राहक केंद्रित कंपनियां भी बाजार नेतृत्व क्यों खो देती हैं? क्रिस्टेंसन का तर्क है कि इसका कारण अक्सर खराब प्रबंधन नहीं बल्कि स्थापित प्रबंधन पद्धतियों का अपने वर्तमान संदर्भ में अत्यधिक सफल होना है। कंपनियां अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों की मांग पर ध्यान देती हैं, लाभकारी उत्पादों को लगातार बेहतर बनाती हैं और निवेश वहां करती हैं जहां प्रतिफल स्पष्ट दिखता है। इसी दौरान कम क्षमता, छोटे बाजार और कम मार्जिन के साथ आने वाली नई तकनीकें उपेक्षित रह जाती हैं। पुस्तक इन्हें विघटनकारी नवाचार के रूप में समझाती है। डिस्क ड्राइव उद्योग सहित अनेक औद्योगिक उदाहरणों के माध्यम से लेखक बताता है कि ऐसी पेशकशें पहले सीमित उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त होती हैं, फिर सुधरते हुए मुख्य बाजार को बदल देती हैं। पुस्तक का उद्देश्य भविष्यवाणी करना नहीं बल्कि उन संगठनात्मक कारणों को समझना है जिनसे स्थापित संस्थान उभरते बदलाव को पहचानकर भी प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, विघटनकारी और संवर्धक नवाचार का निर्णायक अंतर। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण भेद विघटनकारी और संवर्धक नवाचार के बीच है। संवर्धक नवाचार मौजूदा उत्पादों को उनके स्थापित ग्राहकों के लिए बेहतर बनाते हैं। वे अधिक गति, गुणवत्ता, क्षमता, विश्वसनीयता या सुविधाएं दे सकते हैं। ऐसी प्रगति प्रायः वर्तमान बाजार के प्रदर्शन मानकों के अनुरूप होती है, इसलिए स्थापित कंपनियां इसमें दक्ष होती हैं। उनके पास ग्राहक संबंध, तकनीकी ज्ञान, वितरण व्यवस्था और निवेश की क्षमता होती है। विघटनकारी नवाचार का आरंभ अलग ढंग से होता है। शुरुआत में उसका प्रदर्शन मुख्यधारा के ग्राहकों की अपेक्षाओं से कम हो सकता है, लेकिन वह सरलता, कम लागत, सुविधा, छोटे आकार या नई पहुंच जैसे लाभ देता है। इसलिए वह पहले ऐसे ग्राहकों या उपयोगों को आकर्षित करता है जिन्हें मौजूदा उत्पाद पर्याप्त रूप से सेवा नहीं देते। समय के साथ उसका प्रदर्शन सुधरता है और वह मुख्य बाजार की जरूरतों के लिए भी पर्याप्त हो जाता है। तब स्थापित उत्पाद की अतिरिक्त क्षमता उतनी मूल्यवान नहीं रहती। क्रिस्टेंसन की बात यह नहीं कि हर नई तकनीक विघटनकारी है। असली प्रश्न यह है कि वह किस ग्राहक समूह से शुरू होती है, किस मूल्य नेटवर्क में उपयोगी है और क्या उसका सुधार पथ उसे स्थापित बाजार तक ले जा सकता है। यह अंतर कंपनियों को फैशन और वास्तविक संरचनात्मक खतरे में भेद करने में मदद देता है। दूसरा, ग्राहक की बात सुनना कभी कभी रणनीतिक बाधा क्यों बनता है? क्रिस्टेंसन उस लोकप्रिय धारणा को चुनौती देते हैं कि ग्राहक की बात सुनना हर परिस्थिति में पर्याप्त रणनीति है। सफल कंपनियां स्वाभाविक रूप से अपने सबसे लाभदायक ग्राहकों की जरूरतों को प्राथमिकता देती हैं। बिक्री दल उन्हीं खातों से संकेत लाता है, उत्पाद दल उन्हीं प्रदर्शन मानकों पर सुधार करता है और वरिष्ठ प्रबंधन उन्हीं निवेशों को मंजूरी देता है जिनकी मांग तथा आय पहले से दिखाई देती है। यह व्यवस्था सामान्य परिस्थितियों में तर्कसंगत है। समस्या तब पैदा होती है जब विघटनकारी पेशकश उन ग्राहकों के लिए बनाई जाती है जिन्हें वर्तमान कंपनी आकर्षक नहीं मानती। प्रारंभिक उत्पाद कम गुणवत्ता वाला, छोटे बाजार वाला और कम लाभ वाला दिख सकता है। प्रमुख ग्राहक उसे खरीदना नहीं चाहते, इसलिए बाजार अनुसंधान भी उसके पक्ष में स्पष्ट प्रमाण नहीं देता। कंपनी का ग्राहक केंद्रित निर्णय फिर उस अवसर को अस्वीकार कर देता है। लेखक का तर्क ग्राहकों को नजरअंदाज करने का नहीं है बल्कि अलग बाजारों के अलग ग्राहकों को समझने का है। मुख्यधारा ग्राहक भविष्य के नए उपयोगों की विश्वसनीय आवाज नहीं हो सकते क्योंकि वे अपने मौजूदा काम और मानकों के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसलिए विघटनकारी अवसरों के लिए प्रयोग, छोटे बाजारों में प्रत्यक्ष सीख और नए उपयोगकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन जरूरी है। ग्राहक निकटता उपयोगी है पर केवल वर्तमान ग्राहकों तक सीमित निकटता जोखिम बन सकती है। तीसरा, संसाधन आवंटन की प्रक्रिया अवसरों को कैसे छांट देती है? पुस्तक बताती है कि विघटन का प्रश्न केवल दूरदर्शिता या साहस का नहीं, संसाधन आवंटन का भी है। किसी बड़ी कंपनी में धन, प्रतिभा और प्रबंधकीय ध्यान औपचारिक योजना से ही नहीं, रोजमर्रा के निर्णयों से भी बंटते हैं। प्रस्तावों का मूल्यांकन अपेक्षित राजस्व, लाभ मार्जिन, बाजार आकार, ग्राहक मांग और जोखिम के आधार पर होता है। स्थापित उत्पादों से जुड़ी परियोजनाएं इन कसौटियों पर मजबूत दिखती हैं। उनके ग्राहक ज्ञात होते हैं, आय का अनुमान आसान होता है और सफलता कंपनी के मौजूदा आकार के अनुकूल दिखती है। इसके विपरीत विघटनकारी अवसर अक्सर इतने छोटे होते हैं कि वे बड़ी कंपनी की वृद्धि आवश्यकता को प्रभावित नहीं करते। उनका बाजार अनिश्चित होता है और उनका प्रारंभिक मार्जिन कम हो सकता है। ऐसे में सक्षम प्रबंधक भी उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर उन्हें ठुकरा सकते हैं। क्रिस्टेंसन इसीलिए मानते हैं कि केवल शीर्ष नेतृत्व का समर्थन पर्याप्त नहीं है, संगठन को छोटे बाजारों में लाभकारी ढंग से काम करने की क्षमता और अनुमति चाहिए। आरंभिक निवेश को बड़े व्यवसाय जैसे वित्तीय मानकों पर आंकना गलत निष्कर्ष दे सकता है। बेहतर तरीका यह है कि छोटे प्रयोगों से बाजार खोजा जाए, लागत और अपेक्षाएं सीमित रखी जाए तथा सीख के आधार पर निवेश बढ़ाया जाए। इस दृष्टि से नवाचार का प्रबंधन भविष्य का अनुमान लगाने से अधिक अनिश्चितता के बीच उचित सीखने की व्यवस्था बनाने का काम है। चौथा, संसाधन प्रक्रियाएं और मूल्य संगठन की वास्तविक क्षमता बताते हैं क्रिस्टेंसन का संसाधन प्रक्रियाएं और मूल्य ढांचा यह समझने का माध्यम है कि कोई संगठन किसी अवसर पर काम क्यों कर सकता है या क्यों नहीं कर सकता। संसाधनों में लोग, पूंजी, तकनीक, ब्रांड, उपकरण और संबंध शामिल हैं। इन्हें प्रबंधन अपेक्षाकृत आसानी से प्राप्त या पुनर्विन्यस्त कर सकता है। प्रक्रियाएं वे दोहराई जाने वाली कार्य पद्धतियां हैं जिनसे संस्था निर्णय लेती है, उत्पाद बनाती है, बजट तय करती है और बाजार तक पहुंचती है। मूल्य यह तय करते हैं कि किन ग्राहकों, परियोजनाओं और लाभ स्तरों को संस्था प्राथमिकता योग्य मानती है। स्थापित व्यवसाय में यही प्रक्रियाएं और मूल्य दक्षता पैदा करते हैं, लेकिन जब किसी अवसर को तेज प्रयोग, कम कीमत, छोटा ग्राहक समूह या भिन्न वितरण मॉडल चाहिए, तब वे ही बाधा बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंपनी की स्वीकृति प्रक्रिया बड़े राजस्व और उच्च मार्जिन वाली परियोजनाओं के लिए बनी है, तो छोटा उभरता बाजार लगातार अस्वीकृत होगा। समस्या कर्मचारियों की प्रतिभा नहीं, संगठन के संचालन तंत्र और प्राथमिकताओं की होती है। ढांचा यह भी स्पष्ट करता है कि हर नई पहल को मौजूदा कंपनी के भीतर रखना उचित नहीं। जहां संसाधन साझा किए जा सकते हैं, वहां एकीकरण उपयोगी हो सकता है। जहां प्रक्रियाएं और मूल्य असंगत हों, वहां अलग संरचना अधिक सक्षम हो सकती है। अंत में, स्वतंत्र इकाई, छोटे बाजार और खोज आधारित रणनीति। पुस्तक की व्यावहारिक सलाह का केंद्र यह है कि विघटनकारी पहल को उस परिवेश में रखा जाए जहां वह जीवित रह सके। बड़ी मुख्यधारा इकाई आमतौर पर बड़े ग्राहकों, अनुमानित मांग और ऊंचे प्रतिफल के लिए बनाई जाती है। वह छोटे तथा अनिश्चित बाजार को गंभीर प्राथमिकता नहीं दे पाती। क्रिस्टेंसन इसलिए कई स्थितियों में स्वतंत्र या अर्धस्वतंत्र संगठन की वकालत करते हैं। ऐसी इकाई की लागत संरचना, बिक्री पद्धति, सफलता के मापदंड और लाभ की अपेक्षाएं नए बाजार के अनुरूप रखी जा सकती हैं। इसका अर्थ केवल अलग टीम बना देना नहीं है, उसे पर्याप्त स्वायत्तता, अलग ग्राहक आधार और अपनी सीख के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार चाहिए। लेखक यह भी समझाते हैं कि उभरते बाजारों को पहले से पूरी तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता। मांग अस्पष्ट होने पर विस्तृत पूर्वानुमान अक्सर भ्रमित करते हैं। इसलिए संस्थान को खोज की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, छोटे प्रयोग चलाने चाहिए, वास्तविक उपयोगकर्ताओं से सीखना चाहिए और असफल संकेतों को जल्दी पहचानना चाहिए। इस दृष्टि में विफलता का उद्देश्यहीन उत्सव नहीं है, लक्ष्य कम लागत में ऐसी जानकारी पाना है जो बड़े निवेश से पहले दिशा स्पष्ट करे। स्वतंत्र इकाई का औचित्य तभी है जब वह मुख्य व्यवसाय की प्राथमिकताओं से दबे बिना अलग मूल्य नेटवर्क में ग्राहकों और टिकाऊ अर्थशास्त्र को खोज सके। निष्कर्ष में, द इनोवेटर्स डिलेमा उद्यमियों, उत्पाद प्रबंधकों, इंजीनियरों, निवेश निर्णय लेने वालों और स्थापित कंपनियों के वरिष्ठ नेताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसे उन लोगों को भी पढ़ना चाहिए जो यह समझना चाहते हैं कि बाजार परिवर्तन केवल बेहतर तकनीक का परिणाम नहीं होता, बल्कि ग्राहक चयन, लाभ संरचना, संगठनात्मक प्रक्रियाओं और संसाधन आवंटन का परिणाम भी होता है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह किसी नए विचार को केवल आकर्षक या खतरनाक कहने के बजाय उसे परखने के प्रश्न देती है। उसका शुरुआती ग्राहक कौन है? वह किस काम को बेहतर करता है? उसका बाजार अभी छोटा क्यों है? और क्या मौजूदा संगठन की प्राथमिकताएं उसे दबा देंगी? यह ढांचा नेताओं को हर उभरती तकनीक पर अंधाधुंध निवेश करने के बजाय सही प्रकार की अनिश्चितता के लिए अलग संचालन व्यवस्था बनाने में मदद करता है। समान व्यावसायिक पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर इसकी संरचनात्मक व्याख्या है। यह विफल कंपनियों को केवल अहंकारी, धीमा या कल्पना शून्य नहीं बताती। इसके बजाय दिखाती है कि अनुशासित योजना, लाभकारी ग्राहकों पर ध्यान और कुशल संचालन जैसी प्रशंसित प्रथाएं भी बदलते मूल्य नेटवर्क में सीमाएं बन सकती हैं। कुछ उदाहरण अपने तकनीकी और औद्योगिक संदर्भ से बंधे हुए लग सकते हैं और हर नए उत्पाद को विघटनकारी कहना गलत होगा। फिर भी पुस्तक की स्थायी शक्ति इसी सावधानी में है। यह नवाचार को नारे के रूप में नहीं, बल्कि संगठन, बाजार और निर्णय प्रणाली के जटिल संबंध के रूप में समझाती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं क्लेटन एम. क्रिस्टेंसन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।